जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज
की, परम पूज मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय।
हम लोग पिछले कई दिनों से छोटी छोटी बहुत सारी बातों पर जो अपने जीवन में कल्याणकारी हैं उन पर विचार कर रहे हैं। हम रोज कर्म बांधते हैं और रोज हमें अपने पुराने बांधे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और जो कर्म हमारे भीतर बंधे हुए हैं वे हमारे कई भवों तक हमारे साथ जाएंगे। ये सब बातें हम जानते हैं और हमने ये भी समझ लिया है कि जो कर्म हमने बांधे हैं उनका जैसा फल हम भोगना चाहें वैसा भोग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कर्म बांधे हैं वैसे ही फल भोगना पड़ेगा। असल में जैसे हम कर्म का फल भोगते हैं वैसे नए कर्म आगे के लिए बांधते हैं। इसलिए यदि हम कर्म का फल भोगते समय या तो समता भाव रखें, हर्ष विषाद न करें, और या कि उसे शांति के साथ सहन कर लेवें कर्म के उदय को, चाहे वो शुभ रूप हो या कि अशुभ रूप हो। अशुभ रूप होता है तो संक्लेश कर लेते हैं, शुभ रूप होता है तो अहंकार कर लेते हैं, अरे वाह हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। ये दोनों स्थितियों में अभी हमें कर्म का फल भोगने की स्टाइल भी नहीं मालूम कि कैसे भोगा जाता है। पिछले दिनों अपन ने ये सब बातें समझी हैं कि हाँ सचमुच हमारी ही कमी रह जाती है कि कर्म का फल भोगते समय हम या तो एक्साइट हो जाते हैं या कि डिप्रेस हो जाते हैं, और दोनों स्थितियां ही नए कर्मों को बांधने में मदद करती हैं। हम किसी दूसरे को या कि कर्म को भी हम दोषी नहीं मान सकते हैं, हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ की कमी ही हमारे अपने संसार में हमारे भले और बुरे में कारण बनती है। हमने पिछले दिनों समझा है कि अगर हम दूसरे के अच्छे ज्ञान को दोष लगाएंगे तो हमारा ज्ञान ढकेगा, अगर हम दूसरे की भली दृष्टि को बुरा कहेंगे तो हमारी अपनी दृष्टि कमजोर हो जाएगी, हमारे अंदर दर्शनावरण कर्म बधेगा, मोटा मोटा हिसाब। और यदि हम स्वयं दुखी होंगे और दूसरे के दुख का उपाय करेंगे तो हमारे लिए एक जो दुख का संस्कार पड़ने वाला है असाता कर्म वो हमारे बंधेगा, और अगर हम सब जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं कि सब जीव यहाँ पर सुखी रहें, इस तरह का भाव करने से और विशेष रूप से त्यागी व्रती जनों के प्रति जो हमारे मन में और अनुकंपा का भाव है, उनके कल्याण में सहयोगी बनने का भाव है, वो हमारे अंदर साता का बंद करने वाला है या हमें साता देने वाला है। यदि हम महापुरुषों में जो दोष नहीं है उनमें उन दोषों की कल्पना करें और उन पर वो दोष लगाएं तो हमारे अंदर मोह का बंध होता है जो कि हमारे अनंत संसार को दिलाने वाला है, भटकाने वाला है, दर्शन मोह। यदि हम स्वयं कषाय करते हैं और दूसरे को भी कषाय करने के लिए प्रेरित करते हैं या दूसरे की कषाय में निमित्त बनते हैं, तो हमारे अंदर चारित्र मोहनी कर्म का बंध हो गया। इस तरह हम अपने परिणामों के द्वारा रोज रोज ऐसे कर्मों को बांधते हैं। हम बहुत आरंभ और परिग्रह करें तो हम नरक आयु बांध लेते हैं, हम मायाचारी करते हैं तो पशु पर्याय के लिए तैयारी हो जाती है। अगर हम संतोष पूर्वक जीवन जीते हैं, और हमने जिया होगा पहले संतोष पूर्वक, बड़े सहज रूप से, बड़े शांति से जीवन जिया होगा, स्वभाव की कोमलता रही होगी, तो हमने ये मनुष्य पर्याय पाई है। या कि जो लोग देव पर्याय पाते हैं, वे भी इन्हीं परिणामों के द्वारा, दृष्टि की निर्मलता के द्वारा देव पर्याय पाते हैं। हमने आयु बंध की प्रक्रिया भी समझी है। हमने पिछले दिनों कैसे नाम कर्म बनता है, अशुभ नाम कर्म, जब हम देव धन और देव द्रव्य को खाने का भाव पैदा कर लेते हैं, उसके हरण का भाव कर लेते हैं और मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति करते हैं, भली प्रवृत्ति नहीं करते हैं, मन वचन काय से खोटा विचार करते हैं, खोटा बोलते हैं, खोटी क्रिया करते हैं। खोटी क्रिया यही तो है कि जो मंदिर की संपत्ति है, जिसे हमने दान दिया है, उसी के प्रति हमारे मन में लोभ जागृत हो जाता है, तो वो हमारे लिए अपवित्र हो जाता है। फिर उस अपवित्र चीज को हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमारे अशुभ नाम कर्म में कारण बन जाता है। और शुभ नाम कर्म हो अगर तो धर्म और धर्मात्मा के प्रति बहुत अनुराग हो, उसकी मदद करने का भाव हो, मन वचन काय की भली प्रवृत्ति हो और धर्म ध्यान करता हो, तो शुभ नाम कर्म बनता है। और उस नाम कर्म में एक प्रकृति ऐसी है जो अत्यंत शुभ है, तीर्थंकर नाम कर्म। वह तो लाखों करोड़ों जीवों में किसी एकाध जीव को बंधती है, उसे बंधना नहीं कहते, उसे कहते हैं अर्जन की जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का संचय करना, तीर्थंकर प्रकृति को अर्जित करना, जैसे अपन पुण्य को अर्जित करते हैं, वैसी वो तीर्थंकर प्रकृति है। कैसे अर्जित होती है, कैसी वो आत्माएं हैं, विरली आत्माएं, जो कि दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं को भा करके। और देखो भैया, कर्म भी बांधे तो कौन से बांधे, वैसे तो कर्म कोई भी बांधो अच्छे नहीं कहलाते, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म है, वो बिल्कुल कर्म बंध की तरह बंधता है, लेकिन स्वयं को और प्राणी मात्र को कर्मों से मुक्त कर देता है। एकमात्र तीर्थंकर प्रकृति है। जो तीर्थंकर प्रकृति जिस जीव को बंध जाती है, अगले भाव में या उसी भाव में नियम से उसका कल्याण है, और इतने ही नहीं, उसके द्वारा लाखों जीवों का कल्याण, जिसके जन्म लेने से स्वयं का कल्याण, जिसके दीक्षा लेने से, जिसके केवल ज्ञान होने से और जिसके मोक्ष होने तक से सबका कल्याण है। जिसके जन्म लेने पर एक क्षण के लिए नरक में भी मारी थारी रुक जाती है, वे भी शांति का अनुभव करते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति है, वो नाम कर्म है। वैसे तो कर्म की तरह वो बंधने वाली है, लेकिन सामान्य जीव को नहीं बंधती उसके लिए। और वे कैसे माता पिता होते होंगे जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्म लेने वाले बेटे को जन्म देते होंगे, वे कौन सी तपस्या करते होंगे। अपन में से कोई भी तीर्थंकर तो हुआ ही नहीं, तीर्थंकर के माता पिता तक नहीं हुए होंगे, नहीं तो तीर्थंकर के माता पिता, पिता उसी भाव से या कि माँ दो या तीन भाव से मोक्ष नियम से चली जाती। ऐसी वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, कैसा उसका वैभव, तीन लोक में कहते हैं कि क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली, तीनों लोकों में क्या नरक क्या स्वर्ग, घंटा बजने लगते हैं, तुरही बजने लगती अपने आप देवताओं के यहां पर कि चलो गर्भ में आ गए भगवान, गर्भ में जन्म लेने लगे, अब दीक्षा लेने वाले सब दूर, मनुष्य तिर्यंच ही नहीं, देव नार की जीव भी जो है एक क्षण के लिए उस तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आता है उसके प्रभाव से, उदय में आने से पहले भी सत्ता अकेले में विद्यमान है, जब वो किसी जीव के अभी उदय में नहीं आई है, छह महीने पहले से नरक में अगर वो जीव हो तो वज्र कपाट लग जाते हैं, उसकी महिमा कहां तक गाई जाए उस तीर्थंकर प्रकृति की। लेकिन बंधती कैसे, सवाल ये। इतना वैभव, इतना ठाट वाट, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अगर कोई है संसार में पुरुष तो वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला है। बंधती कैसे, कौन सी भावना से बनती? तो कहते दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारणे प्यो, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता सील व्रते सुनतिचारो वीक्षण ज्ञान वियोगो संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधे वैयावृत्त करण महाराधाचारी बहुशत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाने मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थकरत्व इति। तीर्थंकर प्रकृति बांधने की ये 16 कारण भावनाएं हैं, जिनमें से पहली भावना अगर हो तो भी बंध जाती है, अन्य भावनाएं ना भी हो 15। पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना, और अगर इस दर्शन विशुद्धि भावना के बारे में पूछा जाए तो दर्शन विशुद्धि क्या है, परिणामों की निर्मलता ही दर्शन विशुद्धि है, दृष्टि की निर्मलता ही दर्शन विशुद्धि, निर्दोष सम्यक दर्शन का नाम ही दर्शन विशुद्धि है, जिसको कि हम पिछले कई दिनों तक लगातार समझते रहे हैं वो सम्यक दर्शन। लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति बंधे तो सभी को बंधना चाहिए। कहते सम्यक दर्शन के साथ क्या चाहिए, सम्यक दर्शन के साथ मंद कषाय चाहिए और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे, दुख किसी के ना हो, सब सुखी हो। यह जो प्रकृष्ट भावना है, अपन भी भाते हैं लेकिन उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं आ पाती है वही भावना। लेकिन जब कोई दर्शन विशुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन की निर्दोषता के साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाता है, तब तीर्थंकर प्रकृति बनती है। बताओ तो, अपने कल्याण की भावना भाने को वाले को नहीं बंध रही हो, प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले के लिए बंध रही तीर्थंकर प्रकृति। सब दुनिया कहती है कि अपने कल्याण की चर्चा करनी चाहिए, हम भी यही कहेंगे, परोपकारम उत्सृज्य सोपकार परो भवा, परोपकार छोड़ करके अपने कल्याण करने में लग जाओ। तो ये तो हो गई बिल्कुल अलग चर्चा, लेकिन अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है, तीर्थंकर बंधना है, तो इस चीज को भूल जाओ, परोपकार की भावना प्रबल करो। सबके कल्याण में जो अपना कल्याण मानता है उसका कल्याण तो हो ही जाता है, लेकिन इतनी उत्कृष्ट भावना होना आसान नहीं है। किसी केवली श्रुत केवली और तीर्थंकर के पाद मूल में बैठकर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना दर्शन विशुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन की निर्दोषता के साथ भाई जावे, तब तीर्थंकर प्रकृति बनती है। सम्यक दर्शन तो अपन समझते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा होना, तत्व का अभ्यास होना, कषायों की मंदता होना, आपा पर का भेद विज्ञान होना, आत्मा में रुचि होना, ये सब बातें सम्यक दर्शन में कारण बनती हैं। लेकिन सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर क्या है? तो कहते सम्यक दर्शन में तो तत्व का विचार के साथ साथ विषय कषाय का विचार भी चल सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि में विषय कषाय का विचार क्षण भर भी नहीं आता, मात्र तत्व चिंतन चलता रहता है। अंतर समझना चाहो तो ऐसा समझो जैसे कोई जानता है कि लोभ करना बुरा है, सो तो ये तो हो गया सम्यक दर्शन, लेकिन कोई लोभ करना छोड़ देता है, ये हो गई दर्शन विशुद्धि। जैसे कोई जानता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, ये तो जानना है, लेकिन कोई झूठ बोलना छोड़ देता है, तब जो परिणामों की निर्मलता होती है, ठीक वैसा ही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर है। हम सबको सम्यक दर्शन तो संभव है कि हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है वितरागता के प्रति, तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन उस सम्यक दर्शन के साथ कषाय मंद हो, तत्व का चिंतन चलता रहे, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना अपने भीतर उमड़े, तब जो है तीर्थंकर प्रकृति के बंध की प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हम नहीं बांध सकते तीर्थंकर प्रकृति, ऐसा भी नहीं है। क्या कह सकता है कोई कि इतने सारे जो लोग बैठे हैं इसी में से भी कोई भावी तीर्थंकर बन जावे, किसको क्या पता। एक चींटी जो हमारे पैर के नीचे अचानक मर जाती है, ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि वो सामान्य दिखने वाली चींटी बहुत सामान्य है, वो तो संसार में भटकती रहेगी, ऐसा कह सकते हैं नहीं। वही जीव आगे जा करके और तीर्थंकर बन जाए। जिन दीपायन मुनि के द्वारा पूरी द्वारका में 12 योजन की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, जरा से क्रोध के वशीभूत वे आगे जाकर के 19 में तीर्थंकर बनेंगे। जिन सैनिक महाराज के द्वारा मुनि महाराज पे उपसर्ग कर दिया गया था, साथ में नरक की आयु बांध ली गई थी, वे सैनिक महाराज सम्यक दर्शन और तीर्थंकर पत्ति बांध करके आगामी उत्सर्पणी काल में होने वाले पहले तीर्थंकर पद्मनाभ होंगे। हम कह नहीं सकते हैं, पतित से पतित व्यक्ति भी अपने जीवन को पावन कर सकता है, यदि ये अपने भीतर प्राणी मात्र के प्रति ऐसा भाव है, किसी को हम ऊंच नीच नहीं मानते हैं, सबके प्रति हमारे मन में सबका कल्याण हो, जिसके मन में इतना ब्रॉड एटीट्यूड, इतना व्यापक जिसका दृष्टिकोण, इतना व्यापक जिसका सोच है, वही दर्शन विशुद्धि के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं कि हमें ही को बंधेगी, हम इस कुल में पैदा हुए हैं इसलिए हमें भी बंधेगी। मातंगो धन देवस्य, मातंग भी सम्यक दर्शन से युक्त हो सकता है, जो कि चांडाल का काम करता है, ध्यान रखिए। उसको छोटा न समझना, किसी जीव को छोटा न समझना, किसी जीव को हीन न समझना। जो अपने से दूसरे को छोटा और हीन समझता है, अभी वो तीर्थंकर प्रकृति से बहुत दूर है। जो अपने समान प्राणी मात्र को समझता है कि जैसे मेरे भीतर प्राण है, वैसे ही सब चीटी से लेके हाथी तक में सब में वैसे ही प्राण है और सब जीवों का कल्याण हो, इतनी गहरी जिसके अंदर सबके प्रति आत्मीयता की भावना जागृत हो जाती, वो तीर्थंकर प्रकृति। अब कैसे हमारी दृष्टि निर्मल हो, तो हम पिछले दिनों दृष्टि की निर्मलता की बहुत चर्चा कर चुके हैं, और संक्षेप में अगर हम चाहें तो इतना ही कि वीतरागता के प्रति हमारे मन में रुझान हो, इंक्लाइनेशन हो, हमारी रुचि हो कि हाँ सचमुच मुझे उस वीतराग आत्मस्वरूप को, इस शरीर से जो पृथक है, उसको मुझे प्राप्त करना है। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि सदगृहस्थ है, उससे लेकर के आठवें गुण स्थान के पहले समय में बैठे हुए महामुनि, इतने ही लोग तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं। ये करणानुयोग की बारीक पद्धति है, लेकिन भावना तो हम भा सकते हैं, 16 कारण भावना, उसमें कोई हर्जा नहीं। दर्शन विशुद्धि भावना हम भा सकते हैं। लोग पूछते हैं दर्शन विशुद्धि भावना भाने में क्या करना है, तो अपन को यही मालूम है कि 25-200 सरह सम्यक दर्शन है, 100 की पूजा विस्तार लो, 8 बार से कर लो, 16 कारण की सो गई दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि के मायने इतना ही नहीं है, दर्शन विशुद्धि के मायने हैं अपने अंदर की जो वीतरागता है उस पर श्रद्धान के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना। दर्शन विशुद्धि मतलब मेरी दृष्टि इतनी निर्मल हो गई कि सबके भीतर भगवान नजर आने लगे, सबके भीतर अपने कल्याण करने की सामर्थ्य सबके भीतर है, ऐसा लगने लगा कोई जीव मुझे हीन नहीं लगता, कोई दीन नहीं मालूम पड़ता है, सब जीव सामर्थ्यवान मालूम पड़ते हैं, सब जीवों के प्रति मेरे मन में समान दृष्टि आ गई है, मोह और क्षोभ दोनों से रहित हो गई दृष्टि। बताइए, मोह के माने तो दर्शन, मोह और क्षोभ के मायने कषाय की मंदता, क्षोभ से रहित मने कषाय से रहित हो गई। और अपनी भाषा में, सरल भाषा में कहें तो समता परिणाम जागृत हो गया है, साम भाव जागृत हो गया है। न समझ में आए तो दो लाइनें मेरी भावना की दोहरा लो, मेरी भावना में सब लिखो है, अगर अकेली बई भर रख लो अपने पास तो भी काम हो जाए। कौन सी दो लाइनें? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। कहाँ जाना है बहुत सारे ग्रंथ खोजने के लिए, दो लाइनें हमेशा याद रखो। जब भी कोई दुर्जन क्रूर कुमार्ग गामी पे दृष्टि जावे हो, मन अपनो खराब होन लगे, है तो वो बुराओ और मन अपनो खराब कर रहे अपन, तो फौरन याद आ जाए कि साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति। वे भी अपना कल्याण करें, वे भी सन्मार्ग पे लगें, सब जीव अपना कल्याण करें, सब जीव अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त तो कर लेवे। अज्ञानतावश यहाँ पर जीव सुख दुख उठाता है, अरे इस अज्ञानता का क्या निस्तार है, इस अज्ञानता से मैं तो बच गया हूँ, मुझे तो थोड़ा ज्ञान हो गया है, अपने कल्याण की शुद्ध जागृत हो गई, लेकिन ये तो देखो कैसे अज्ञानी जीव हैं, अरे इनका कल्याण कैसे हो जाए, ऐसी ललक भीतर पैदा हो जाए। ललक होनी चाहिए, अकेले कहने कहने से काम नहीं चलेगा। कैसी होती ललक दूसरे के कल्याण की, कभी जानना चाहा आपने? क्या हुआ एक बार, दो मित्र थे एक संगे पड़े हुए, और फिर बाद में एक बुरी संगत में पड़ के बिगड़ गया और डाकू बन गया। अब बताओ, जंगल में रहने लगा, डाका डालने लगा, लोगों को मार पीट करने लगा, कष्ट देने लगा, और मित्र को बड़ा दुख कि मेरा मित्र जो है ऐसा तो नहीं था, जब हमारे साथ रहता था तो बड़ा अच्छा स्वभाव था, ये कैसी संगति मिल गई कि ये डाका डालने लगा, मैं इसको कैसे ठीक करूं, खाया पिया नहीं जा रहा कि मेरा मित्र बिगड़ गया, ऐसा अपने संगे हूत करूं? विचार करना, नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं, अब अपन को तीर्थंकर प्रकृति को विचार ही करो चाहिए, अपन को मधु अनुभव अभी संभव नहीं है। हाँ, विचार ही कर लो अकेलो, तीर्थंकर बहुत विरली चीज है, इसलिए विरली है क्योंकि ऐसा परिणाम ही जागृत नहीं होता, अपनी रोटी नहीं छूटती, अगर को बिगड़ जावे तो बिगड़ गए उसे बिगड़ जाओ, अपन अपनो करो जीवन में धरो है काम। ये तीर्थंकर प्रकृति की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, उसके लिए तो ऐसे ही विचार करना पड़ेगा, सोचता है वो कि क्या करूं, मुझे कभी मिल जाए तो मैं समझाऊंगा। लोगों ने कहा कि वो जंगल में रहता है तो रोज जंगल में घूमने जाता था कि कहीं कभी टकरा जाएगा, और एक दिन ऐसा संयोग बना कि घोड़े पे बैठा हुआ सामने से मित्र आता दिखाई पड़ा, तो मन ही मन इसने सोचा कि बहुत अच्छा रहा आज तो, लगाम पकड़ करके और कहूंगा कि क्या करते हो, चलो वापस, ये सीखा तुमने, और जा करके सीधा और घोड़े की लगाम पकड़ के, जिस डाकू से दुनिया डरती थी घोड़े की लगाम पकड़ना तो ठीक ही है, उसकी दृष्टि अगर पड़ जावे तो लोगों को गश्त आ जावे, और ये तो मित्र था, उसने घोड़े की लगाम पकड़ के कहा कि क्यों तू डाकू बन गया, तुझे शर्म नहीं आती? वो जो मित्र डाकू बन गया था उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा ही मित्र है, कुछ नहीं बोला लेकिन सिर्फ इतना कहा कि चुपचाप अपने रास्ते चला जा, इतने शब्द किसी और ने बोले होते तो जवान खींच लेता, पर तू मेरा मित्र इसलिए चुपचाप अपने रास्ते चला जा। मित्र को बहुत दुख हुआ कि अरे मुझे ऐसा नहीं कहना था, ये दुख नहीं हुआ कि मेरे मित्र ने मुझसे ऐसी बात कह ली, दुख ये हुआ कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी समझाया जाता है, जो हम ऐसा समझा रहे थे उसको घोड़े की लगाम पकड़ के और ऐसा कह दिया कि तुझे शर्म नहीं आती, अरे मेरे समझाने का तरीका ठीक नहीं है। देखो जे है उसके भीतर दूसरे को सुधारने का भाव, कहां मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुरार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार। इतना आसान नहीं है, पुकारना आसान है, सुधार में सब चाहते दूसरे को, लेकिन कभी किसी को आवाज दी, किसी को प्रेम दिया? जब सुधारो, दुलार के बिना सुधार तो संभव ही नहीं है। कौनो लड़का को अपनी मताई ने मार पीट के अच्छो बना हो बता तो देवे, इतनी मताई बैठी कौन बता दे भी, हाँ तू चो करके कि हमने अपने लड़का को मार पीट के अच्छो बना लो, जो बन गो अच्छो नहीं। जब भी बना है, जब दुलार से ही बना है, प्रेम से ही बना है, उसको आया ध्यान में कि ऐसे नहीं हो सकता, सुधार ऐसे संभव नहीं है, मुझे अपनी भाषा ठीक करनी पड़ेगी। अब जब मिलेगा तो उससे कहूंगा कि तें ऐसा क्यों हो गया, चल तो मेरे साथ, मुझे बहुत दुख होता है। अब तो ऐसा कहूंगा। और फिर उसने मौका ढूंढा और अब की बार फिर एक दिन मिल गया तो हाथ जोड़ करके, घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी, हाथ जोड़ करके कहा कि तू ऐसा क्यों रहता है, ऐसा क्यों हो गया, मुझे तेरे ऐसे रहने से बहुत दुख होता है। अब की बार कहते हैं कि उस डाकू बड़े मित्र ने कुछ नहीं कहा, आंख नीची हो गई, घोड़े से नीचे उतर करके और चुपचाप सिर नीचा करके घोड़े को पकड़ के सामने से चला गया। अरे अभी भी मुझ में कुछ कमी है, अभी भी मैंने ठीक से कोई बात नहीं की, मुझे इतना भी क्यों कहना था कि तू ऐसा क्यों है, वो जैसा है रहने दो, मेरा मित्र है, मुझे तो यही कहना था अकेला कि मुझे तुम मेरे साथ रहा करे, मुझे तुम्हारा साथ नहीं है तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे ये नहीं कहना था कि तुम ऐसे क्यों हो गए, ये तो उलाहना हो गया, उलाहना देने से कोई सुधरता है क्या? अब बताओ, अगली बार मिलेगा तो कुछ नहीं कहूंगा, अगली बार तो यही कहूंगा कि तू मेरे साथ चल, मुझे अब तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, बताओ। अब अगली बार फिर मौका आता है और वो डाकू बना हुआ मित्र फिर से मिलता है तो उसके चरणों में लिपट जाता है, फूट फूट के रोता है कि अब तो तेरे बिना मुझे रहना संभव ही नहीं है, ऐसा ऐसा मेरे मन में अब रहा नहीं जाता, तुझे ऐसा देख करके मुझे बहुत दुख होता है, और फूट फूट कर रोने लगा उस डाकू के चरणों में। तब फिर वो नीचे उतर के और अपना वेश उतार देता है और कहता कि चल आज तेरी बात नहीं टाल पाऊंगा, छोड़ता हूं, सब छोड़ देता हूं। अरे पहली बार क्यों नहीं मान ली, पहली बार तो तू मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा रहा था, दूसरी बार मुझे उलाहना दे रहा था, तीसरी बार मुझे लगा कि तू मेरे ऐसे होने से वाकई में दुखी है, अब मैं वैसा नहीं रहूंगा। कोई मेरे ऐसे होने से दुखी हो? नहीं। बिगड़ने वाला, कुमार्ग पर लग जाने वाला हमेशा यही विचार तो करता है कि हम बुरे रास्ता जा रहे हैं, सो को खो का मतलब कौन खो है, हमारे पीछे को रोए वारो है, कौन खो हमसे तकलीफ है। इसलिए तो जितने अपराध होते हैं ध्यान रखना, उनके पीछे मानसिकता, कभी कभी अगर साइकोलॉजी पढ़ो, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पढ़ो, कभी अपराधियों की साइकोलॉजी पढ़ो, वे कहते हैं कि उनने अपराध तब से शुरू किया जब से उनके जीवन में प्यार खत्म हुआ, दूसरे से आदर सम्मान और प्रेम मिलना, दूसरे की करुणा मिलना बंद हो गई, तब से हमारे मन में अपराध प्रवृत्ति जाग गई। भैया हम सब के भीतर अगर अज्ञानता है, हम सब के भीतर अगर खोट है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारे अंतरंग में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा नहीं जागृत हुई, इस वजह से हमारे भीतर ये खोट है। विनोबा ने लिखा कि बचपन में मैं बहुत कठोर था, किसी के मर जाने से मेरी आंख भीगती नहीं थी, किसी के दुखी होने से मैं मुस्कुराता था, ऐसा मेरा खोटा स्वभाव था, विनोबा भावे लिख रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब भूदान यज्ञ के लिए उन्होंने 40,000 किलोमीटर की यात्रा की, गरीब से गरीब आदमी से मिले तो उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है, वो कहता था मालिक 100 एकड़ है। कितने भाई हो तुम? 3 भाई। अरे 3 कैसे हो? मैं जो तुम्हारा चौथा भाई हूं कि नहीं हूं? हां हां, आप भी हमारे चौथे भाई, तो मेरी जमीन कहां है, मुझे दो। ऐसे मांगते थे, कोई से पूछते थे तुम कितने बेटे हो? हम चार बेटे हैं। अरे चार कैसे, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं क्या? हां हां, तो आप भी मेरे बेटे हो, तो पांच हुए, मेरी जमीन दो। तब वो लिखते हैं कि मेरे भीतर फिर इतनी दया इतनी करुणा उमड़ती थी कि मेरा स्वभाव ही बदल गया। बताइए, इस तरह अगर प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में और सबके कल्याण का भाव उपजे, तब जाकर के ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधती है, जिसमें हम और समझते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, दिखाई पड़ता शरीर है, उसी से हमारा राग द्वेष होता है। आत्मा दिखाई पड़ जाए तो आत्मा से तो किसी का राग द्वेष नहीं, आपके भीतर बैठी आत्मा दिखाई देने लगे तो काय को राग द्वेष है। और जब तक जब बाहर की सकल सूरत दिखा, अरे जी बे आए जो नुदना हम सतना कैसी कह रहे थे, हाँ जी तो आए, अब ले अब जी तो आए, अब जी सकल सूरत की वजह से। और वैसे वैसे तुम क्या जानते कि विद्यो पर्याय में पहले हंती और रू के पहले और कहां कहां घूम करके आए, जानते क्या? नहीं, एक पर्याय की वजह से हम सुख दुख करते हैं। पज्जे मूड़ा ही पर समया, इसको शास्त्रीय भाषा में ऐसा कहते, हमने अपनी भाषा में ऐसा कह दिया। शास्त्र में क्या लिखा मिलेगा? पर्याय में मूल है, पर्याय में ही राग द्वेष करता है, सुसंसारी है। और अगर मुक्ति चाहिए तो पर्याय में राग द्वेष छोड़ो, जो द्रव्य है जिसमें से ये पर्याय निकल रही है उस द्रव्य को देखो, द्रव्य दृष्टि जागृत करो, अर्थात अपने सबके भीतर बैठी आत्मा के स्वभाव की तरफ अगर दृष्टि चली जावे तो फिर प्रेम ही उमड़ता है, फिर राग द्वेष नहीं उमड़ता है। इतनी सी बात है, ऐसी दृष्टि की निर्मलता तब होती दर्शन विशुद्धि और तब बनता है तीर्थंकर प्रकृति। एक व्यक्ति अजमेर में आचार्य श्री सुनाते हैं, हमने जी पूरी बातें आचार्य श्री की अपनी भाषा में सुनाई, हमारे में कच्चू ने समझी हुआ। हाँ, हम सवेरे से देखते रहे वो किताब में कि दर्शन विशुद्धि पर आचार्य श्री कई बार समझा चुके हैं, किस तरह से उन्होंने हमें बताया, सब याद आ जाता, फिर एक एक करके जरा सा इस टच हो जाए तो हम। इसीलिए तो कई बार मन में आता कि अब रहन दो, अब कायक हूं, अब रहन दो, कहां तक करें, फिर हमें लगता कि नहीं पता नहीं आज सुन रहे हैं और कहो 10 साल बाद और जरा सा कोई निमित्त मिले और याद आ जाए, याद आ जाए तो अपनो सुनो भाव काम में आ जाए, अबे भले ही नहीं आवे नया दो कोई बात नहीं, हमें इसका बिल्कुल भी वो नहीं। कई बार लगने लगता मन में कि इतनी बातें सुनते हैं कोई कचू करने धन्य है नहीं, बेकार में परेशान हो अपन, ऐसा मन में आता, फिर लगता है ऐसा नहीं है। देखो हमने सना सी की सुनी बात और आज काम में आ गई, हमें 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, अब जरा सी हमने उसमें से किताब पलटी और देखी, अच्छा सब याद आ गया कि अच्छा यही तो कहा था आचार्य श्री ने उस समय, हम तो भूल ही गए थे। हम कल तक ये सोच रहे थे कि दर्शन विशुद्धि का कैसा अर्थ होता होगा, सम्यक दर्शन की निर्दोषता लिखी है, हम किताब में भी संस्कृत में पढ़ के आए कि जिनोपदेश के निर्ग्रंथ मोक्ष बर्तमनी रुचि रुचि, जी तो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि होना सम्यक दर्शन है। अब दर्शन विशुद्धि क्या चीज है? तो जरा सा नोट्स पलटे आचार्य श्री के और याद आ गई वो घटना, आपको सुनाए। वे कहते कि दर्शन विशुद्धि के लिए हमसे किसी ने पूछा तो हमने एक उदाहरण सुनाया। अजमेर में आचार्य श्री को जब दीक्षा ली, सन 68 के लगभग की बात होगी, 68 में दीक्षा हुई, 69 की बात होगी, 81 साल आगे पीछे दीक्षा ली थी। एक व्यक्ति आए, सुकेन लगे, महाराज आप ऐसे नग्न रहते हो तो हम लोगों को राग उत्पन्न होता है, आप जो है एक थोड़ा लंगोट इत्यादि लगाओ तो अच्छा लगे, शोभा देगा, भव भव माने सभ्यता मालूम पड़ेगी। आचार्य श्री हंसने लगे, अब क्या कहें उनको, अरे भाई दृष्टि की निर्मलता किसे कहेंगे, ये उनको समझाना बहुत कठिन है। तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो भैया, हमारे यहां तो आप स्वयं भी मानते हो कि परिग्रह ज्यादा नहीं रखना चाहिए, कहले हाँ महाराज रखना नहीं चाहिए, कम से कम परिग्रह में काम चल जाए, कहले हाँ महाराज। तो बोले देखो अगर हम लंगूट रख ले हैं तो एक थोड़ी फिर दो रखने पर, एक धोने पर एक पहनने पर चले हमारा चलो उसमें कपड़ा इतना इतना तो लगेगा। कहती हाँ लगेगा। यदि तुम ऐसा करो दो छोटी छोटी पट्टी बनवा लो हरे रंग की बनवा लो और इतने ऐसी लगा लो जब हम निकले सो डाल लेंगे अपने ऊपर और बस आगे बढ़ गए। ये बहुत हंसवाने जैसा उदाहरण था लेकिन कहने का आशय क्या था कि तुम अपनी आंख संभाल लो तो संसार सब अच्छा दिखाई पड़ेगा और अपनी आंख नहीं संभालते हो दुनिया भर समझ जावे तो भी कोई कुछ नहीं होने। ये है दर्शन विशुद्धि।
आराम को जवाब दो।
ये है दर्शन विशुद्धि कि हम हरेक के भीतर अच्छी चीज देखें तो अच्छी दिखेगी। वही निर्ग्रंथता वही यथाजात रूप हमें वीतरागता का अनुभव दे सकता है और उसी में हम राग करना चाहें तो राग कर सकते हैं। नग्न स्वरूप देख करके काका कालेल कर कहते हैं कि ऐसा स्वरूप देख करके मेरे अंदर तो वीतरागता उमड़ाई। कौन कहता है कि ये वेश अश्लील दिखाई पड़ता है। अरे हमने तो आधे धोधे कपड़े पहने लोगों के अंदर अश्लीलता ज्यादा देखी इन निर्ग्रंथों की अपेक्षा। हाँ ऐसा उन्होंने लिखा अपने संस्मरण में। दृष्टि की निर्ग्रंथता किसे कहेंगे दृष्टि की निर्मलता किसे कहेंगे जहां हम अपने भीतर ऐसा वीतराग भाव उत्पन्न कर लेते हैं जहां हमारे भीतर ऐसी निर्मलता आ जाती है कि प्राणी मात्र के भीतर भलाई दिखाई देने लगती है और सबका भला हो ऐसा हमारे मन में विचार आने लगता है तब समझिएगा कि दर्शन विशुद्धि आ गई। अपन लोग विचार करें कभी कभी थोड़ी देर कोई सही अपनी दृष्टि राग द्वेष से रहित हो जाए अपनी दृष्टि में सबके प्रति साम्य भाव आ जाए। कम से कम सुबह शाम 10 मिनट बैठें अपन हाथ पे हाथ धरकें और उतनी देर तो कम से कम ऐसा विचार करें कि सबका कल्याण हो भाई। और हम क्या कर सकते किसी का कल्याण कोई कर नहीं सकता यहाँ लेकिन कल्याण दूसरे का हो ऐसी भावना तो भाई जा सके और ऐसी भावना भाने से स्वयं का कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरे का हो तो हो न हो वे तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है पर हमारे अंदर तो इस तरह का भाव आ ही सकता है। ऐसी भावना के साथ अपन को ऐसी भावना भानी चाहिए दर्शन विशुद्धि एक एक या दो दो करके अपन आगे वाले आने वाले दिनों में समझेंगे। और हम ये बात बार बार भूल जाते हैं तो कल भी हम भूल गए थे कि भैया 11 तारीख आने वाली आई गई समझ लो दो तीन दिन और रह गए और सब लोग जैसे छह ढागा में सबने खूब मन से और पढ़ा था जितना आधा धोधा जिससे बना था प्रसन्नता हुई थी कि चलो चार बातें पूछी थी एक बन गई भाई एक ही मन में याद रहेगी ये कम से कम आत्मविश्वास तो बनेगा कि हमने भी कुछ इस दौरान सीखा है समझा है ऐसी दृष्टि से। और जो भी लोग आने वाले हैं उनसे जितना बने अपन को धर्म का ज्ञान ले लेना चाहिए। बच्चों के लिए भी प्रेरित करिएगा इसलिए रख लिया है अभी उस फॉर्म में लिख दीजिएगा कि छह कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम 7 बजे स्कूल चले जाते महाराज हमारी पहले लगवा दो आप तो 6 बजे से 7 बजे तक सुबेरे सुबेरे आ जाओ और 6 बजे से 7:45 तक पढ़ लो और चले जाओ अपने स्कूल की ड्रेस पहन के आ जाओ यहीं से उठ करके चले जाना कोई हर्जा नहीं है। बच्चों को ऐसा कहो कि थोड़े पहले उठ जाओ 10 दिन के लिए जरा जल्दी उठना 5 बजे उठना सीख लो। 6 बजे क्यों उठ रहे हो 7 बजे तैयार होके जिसको 7 बजे तैयार होके जाना वो 6 बजे से पढ़ लो जिसको 8 बजे जाना वो 7 बजे से 8 बजे पढ़ लो और फिर बाकी सब लोग 8 बजे से बैठे 9 बजे तक। बाल बोध पढ़ने में संकोच न करना। अभी कई चीजें ऐसी होंगी तेल में भगवान को का चिन्ह है हमें नहीं मालूम बताओ। अरे 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह तो याद हो जाएं दुनिया भर के नाम तो याद हैं दुनिया भर के माता पिता के नाम मालूम हुई है लेकिन अपने महावीर स्वामी के माता पिता और वासुपूज भगवान के माता पिता और कितने तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया कितने तीर्थंकर ऐसे ही बिना विवाह के और चले गए और किन किन ने विवाह किया कौन कौन चक्रवर्ती हुए। अरे ये छोटी छोटी बातें महापुरुषों के बारे में कम से कम थोड़ी देर जानने में आएंगी कभी कभी याद आ जाएगी तो अपना अपना कल्याण में सहायक बन जाएंगी, ऐसा सोच करके सब खो। ये नहीं सोचना कि अब हम तो 70 साल के हो गए, कब बालबूद पड़े, कूका कहे नाम धरे के लिए इनको जो नहीं आऊ पहला भाग में बैठी जी। नहीं, संकोच न करना। हाँ, और पूरे उसके साथ सब लोग जो है, और सुबह वाले तीन अलग अलग हो जाएंगे, जिसको जब टाइमिंग सेट हो सुबह की, दोपहर में तो जो है थोड़ी बड़ी कक्षाएं। कई लोग हमसे कहते कि हमें उच्चारण करवा दो, स्टोप देश का करवा दो, हमें तत्वार सूत्र का उच्चारण ठीक करवा दो हमारा, कर लेना भैया 10 दिन में। दीदी लोग भी रहेंगी तो बहनें उनके साथ कर लें, भाई लोग रहेंगे तो भाई लोग उनके साथ कर लें, बड़े वो बहनारा जी हैं तो बड़े लोग उनके साथ बैठ जाएं कि हमारे सुधरवा तो दो, जिंदगी ने कर गई हमारी, तत्वार सूत नहीं पढ़ पा रहे हम, अब आप सिखा दो हमें। घंटा भर लगे घंटा भर लगाओ, दोपहर में यही काम चले कि भाई रत्नगण शाप्ताचार का उच्चारण सीख लो, स्टोक देश का उच्चारण सीख लो, भक्तांबर का, तत्पार जिसका उच्चारण सीखना सीख लो, ज्ञान तो बहुत हो गया, नहीं आवे अर्थ कोई बात नहीं, उच्चारण तो आवे कम से कम भगवान की वाणी का शुद्ध उच्चारण तो हो जाए। सो दोपहर में 10-10 5-5 लोग, ज्यादा की आवश्यकता नहीं, जितने हों सब बैठ करके अलग अलग, क्योंकि 10 लोग कम से कम आ रहे तो 10 लोगों के पास 10-10 लोग भी बैठ जाएंगे तो 100 लोग आराम से जो है सीख सकते हैं, जल्दी सीख लेंगे, एक ही व्यक्ति नहीं सिखा सकता सबको। और शाम को फिर बैठो, शाम को अपन भक्ति के बाद सीधा बैठ जाएंगे, सवेरे से हम भी बोलेंगे, ऐसा नहीं समझना कि 9 बजे से हम आपको छोड़ देंगे, जल्दी 10 ही बजे छोड़ेंगे, 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, एक घंटे तो वहां बैठना पड़ेगा, फिर बाद में हम बिठा देंगे एक घंटे। आप क्या सोच रहे थे, आपने काय बुलाया हमारे लिए अपने यहां पर, अपने बुलाना अगली बार से, क्योंकि बहुत खतरा हो जाता है इसमें। तो ऐसा विचार करके जो है कि फिर कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा अवसर फिर से आए, कोई सोच सकता है क्या, क्या हम सोच सकते थे, कोई सोच सकता था, लेकिन भैया जो अपने को संयोग मिला उस संयोग को सुयोग में बदल देना। संयोग तो भी बहुत दुर्लभता से मिलता और वो संयोग सुयोग बन जावे, वो ऐसा हो जाए कि हमारे जीवन के कल्याण में सहयोगी बन जाए, ऐसी भावना से सब लोग जो है, चाहे फार्म भरो चाहे नहीं भरो, बैठने सबको है, जो जो नहीं बैठे हमारे पास नाम लिखवा दियो कि हम नहीं बैठ रहे, जोन जोन को बैठने से इनके पास लिखवाइयो भैया, और जोन जोन को नहीं बैठने से हमारे पास लिखवा देना कि हम नहीं बैठ रहे महाराज। हमारा कहने का आशय ये है कि सब लोग जो है रुचि पूर्वक, क्योंकि सबके टाइमिंग्स के, और शाम को भी रखा है, शाम को सभी क्लासेस 7 बजे से वो 6 बजे से 7:30 तक, ज्यादा रात नहीं, सब अपने अपने 7:30 बजे घर पहुंच जाएं बस, और जो विद्वान आएंगे उनको आधे घंटे अपन सुबह सुन लेंगे, शाम को सुन लेंगे, इस तरह से 10 दिन का मामला है, उसमें परीक्षा भी ले लेंगे, वैसे ही वाली परीक्षा ले लेंगे जैसे अपन ने 6 ढाला में ली थी, बड़े आराम से बैठ करके। और देखो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य धर्म ध्यान का है, जैसे बने तैसे धर्म ध्यान करना है, कोई को किसी माध्यम से होता, कोई को किसी माध्यम से होता है, जिसमें मन लगे उस हिसाब से हमारी भावना तो यही है। आप सब भी हमारी भावना में सहयोगी बनेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ, अभी तक तो आप हमारा साथ देते आ रहे हैं, इसका हमें बहुत प्रसन्नता है, इसमें कोई शक नहीं है। याद रहेंगी ये छोटी छोटी चीजें, मुझे और बहुत बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रहती, छोटी छोटी जिसमें आत्मीयता झलकती, जिसमें अपनापन झलकता, वो बातें हमेशा याद रहती कि देखो हमारे जरा सा इशारा करने पर, कल जरा सी तो हमने कही थी और कुछ नहीं बल्कि डांट ही और दिया था कि तुम पैसा दे के जाते हो कि हमने दी थी, सो सब ने जो है उत्ते उन व्यक्ति को एक, वो कितने प्रसन्न होकर गदगद होकर के गए कि हम तो सोच रहे थे कि 1000 रुपया दे दो, वो भी इकट्ठे हो गए, सो 10-12 हजार हो गए, बताओ एक मिनट में सबने ऐसे दे दिए कि हम ले जाओ हमें क्या करने, 100 रुपये तो कहो भाई रस्ता में चलत गिर जावे के कहो पानी थूक दे तो खा के 15 दिन में पता ही नहीं लगे। हाँ कई लोगों के साथ पर दे दिए काम आ गया, वो उस व्यक्ति की आंख भीग गई, अपना काम हो गया, वो गदगद हो गया। तो ऐसे जो है आप धर्म ध्यान के अवसर मिलने पर आप सहयोग करते हैं, यही प्रशंसा की चीज है, इसी भावना के साथ कि हम सबके मन में और अच्छे विचार बने रहें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर की जय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वर